Hello and welcome to The Big Fight, the show that is young at 21, the oldest running debate show on Indian news television. I'm Sanjay Rupani. Election fever is now at its peak in Bihar. The big guns are out. Prime Minister Narendra Modi will in all have 12 rallies. Tejaswi Yadav is having 12 rallies every day. Lots of buzz around the huge crowds at his rallies. Meanwhile, there is a side script in the NDA with Chirag Paswan. He claims to be with the BJP. BJP claims that they are with Nitish Kumar. Rahul Gandhi has also jumped into the canvassing mode, criticizing Modi. But this time around, one notices one peculiar trend. Gone are the days when Nitish led the NDA in Bihar. Is this a case where he has had to pillion ride on Modi's popularity? That too after 15 years of leading a government. In his speeches, Nitish Kumar mentions more about central government schemes than his own. There are many personalities in this election, but on The Big Fight tonight, we ask, has the Bihar election now become about mainly two personalities? Tejaswi Yadav and Narendra Modi, and not Tejaswi and Nitish. Is the BJP hedging its bets with Chirag Paswan? And what really is the real deal? We inquire. Let's now first start The Big Fight. I have with me, and I want to introduce our guest this evening, Shivanand Tiwari, senior leader of the RJD. Satya Prakash, JDU spokesperson, is also with us. Lalita Kumara Mangalam, member of the BJP, is with us. And Mr. Rameshwar Chaurasia, leader of the LJP, is going to be with us in just a short moment. All right, Lalita Kumara Mangalam, let me begin with you first. How would you like to respond to this assessment that this time around, for a Nitish Kumar, he doesn't see himself in a position of power? That position of power in the equation between him and the NDA, or him and the and Narendra Modi, is now tilted towards Mr. Modi. In other words, this has become a contest between RJD's Tejaswi Yadav and Modi's face, not Nitish Kumar's face.
Sanket, I think it's a bit unfair to compare a relative youngster. I do not normally use strong words. Somebody who's a greenhorn in many ways to the Prime Minister. The Prime Minister has been in politics for decades. Tejaswi is still a young boy who's still riding quite high on his father's, what he thinks are his father's achievements in the last time that he was Chief Minister, and his family when his mother was. Now, I'd like to make one point that it's very clear, and Mr. Modi has made this, the Honorable Prime Minister has said this over and over again, that the NDA is fighting elections in Bihar. It is not either the BJP, only the BJP, or only Nitish's party. It is the NDA that is fighting elections in Bihar. On the other side is the UPA, the Congress, the RJD, whoever else. And, obviously the Prime Minister is going to campaign in Bihar. Bihar is a very important state.
I'm going to come.
Give me 10 seconds.
Sure.
I don't think Nitish has taken a back seat. There are certain formalities that are followed when the Prime Minister of the country comes to campaign in any state. And this is done regardless of whether it's Mr. Modi or Indiraji or Rajiv Gandhi or anybody else.
Okay.
So
okay.
That's the only thing that's been followed.
Yeah, I think I'm going to come back to you. I'll come back to you, Lalita Kumara Mangalam. Mr. Satya Prakash, I would have to give you the right to reply because this is criticism and I've got assessment. Reams and reams have been written about what is going wrong over the past 15 years in Nitish rule, particularly the last 5 years, and how this time around perhaps Nitish Kumar does not have the same sort of sway as he had, say, in 2005 and 2010. Your response, opening comments.
You know, Nitish Kumar is the NDA leader and he has a credit of being a Sushasan Babu. You know, this regime achieved the growth rate of 11.3%, which is highest in the country. The credit goes to Nitish Kumar and the NDA as well. There was some kind of, you know, disturbance during his regime for 1 year, but he took the charge again. And, you know, this time 35% woman reservation paved the way for women empowerment, and Sharab Bandi, the complete ban on liquor in this regime, created, you know, a kind of atmosphere where, you know, the Bihar downgraded in the crime data. complete control over the crime. This is the achievement of Mr. Nitish Kumar. So he is referred as a Sushasan Babu, the corruption-free government, the crime-free society, and you know, the communal-free society. It was labeled against him that when the BJP is with Nitish Kumar, there may be some kind of communal scenario, but it never happened in the regime of 2015 to 2020. So Nitish Kumar has the credit of being the super chief minister in Bihar, a Sandeep minister Prakashi, who runs a smart governance.
We give all our panelists 1 minute time for their opening comments. I'm going to come back to you. Shivanand Tiwari as well as Mr. Rameshwar Chaurasia. We'll come to you one by one. Tiwari ji, sabse pehle aapne suna Satya Prakash ji ka kya kehna hai, Lalita Kumara Mangalam ji ka kya kehna hai. They seem to suggest that no, this is a figment of the opposition's imagination that Nitish Kumar is weak. He is not weak. Nitish
Aap
Kumar kamzor nahi.
Hindi pe sawal kar lijiye Sanket.
Ji ji, main ye keh raha hu Shivanand ji ki Bhajpa aur JDU dono ka ye manna hai ki aisa kuch nahi hai ki Nitish Kumar kamzor ho gaye hain. उनका पलड़ा अब उतना भारी नहीं है जितना 2005 और 2010 में था. आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज की जो रैली हुई, सासाराम की जो रैली फ्राइडे को हुई, उसमें उन्होंने, नीतीश कुमार ने अपनी स्पीच में 60-70% काम जो गिनाया वो केंद्र का काम था, बजाय इसके कि अपनी सरकार का गिनाते.
आवाज गायब हो गई
जी. आप बोले शिवानंद जी.
देखिए भले हमको कहना क्या है, आपके चैनल पर ही प्रधानमंत्री जी के सभा में गए लोगों ने, मैंने प्रधानमंत्री से ज्यादा जरूरी समझा उनका हेलीकॉप्टर देखना, और उस भीड़ में लोगों ने कहा कि नीतीश का शासन हमको नहीं चाहिए, नीतीश को हम यहाँ से हटा के मानेंगे. और प्रधानमंत्री जी के भाषण ने बहुत ही निराश किया, और खास करके जो नौजवान है वो उस सभा में इसलिए गए थे कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे. प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि प्रधानमंत्री जी ही बिहार के नेताओं की तरह नकारात्मक भाषण जो है दिया, और मैंने 15 बरस के लालू राज का उन्होंने याद दिलवाया, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने बिहार की जनता के लिए कोई आश्वासन जो है वो नहीं दिया. और बिहार तो हम मानते हैं कि ये देश का उपनिवेश बना हुआ है. अगर बिहार की ये हालत नहीं होती तो सस्ते में बिहारी मजदूर जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा को नहीं मिलते.
स्थिति नहीं होती,
इसलिए जानबूझ करके बिहार को इस हालत में रखा गया है.
जी, मैं आता हूँ आपके पास अभी थोड़ी देर में, वापस आता हूँ तिवारी जी थोड़ी देर में. एक एक मिनट का शुरुआती वक्तव्य के लिए सब लोगों को समय दिया है. रामेश्वर चौरसिया जी, आप तो बीजेपी में थे, अब एलजेपी में आए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये चिराग पासवान को लेकर के क्या है पोजिशन, आप हैं एनडीए में, आप हैं बीजेपी के साथ या नहीं है, बीजेपी से नाराज हैं, जेडीयू से नाराज हैं, क्या है स्थिति?
देखिए दो चीजें इसमें हैं. एक तो आपको मालूम है कि चिराग पासवान जी पहले से बोलते आ रहे थे, 3 महीना पहले से, कोई नई बात नहीं है, कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, जहां कमल होगा वहां झोपड़ी नहीं होगा, लेकिन जहां तीर होगा वहां झोपड़ी होगी. तो ये मामला कोई नया नहीं है, और उन्होंने साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के साथ मैं नहीं हूं. और ये हम लोग भी अपनी पार्टी को बता रहे थे कि नीतीश के साथ जाने पर समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए एलजेपी और बीजेपी के गठबंधन बनाने की हम लोग भी हिमायती थे, जिससे हम बिहार में सत्ता में पुनः वापसी कर जाते. आज आपने जो देखा प्रधानमंत्री जी की सभा में, ये तो आज देखा, लेकिन आप तो 3 दिन से चला रहे हैं, नीतीश जी की किसी सभा में लोग नहीं आ रहे हैं. दूसरी, हमारे प्रदेश के जो डिप्टी हैं नीतीश जी के, उन्होंने तो नीतीश जी के हाथों में बीजेपी को गिरवी रख दिया, सासाराम नोखा जैसी, पाली जैसी सीटों को भी मुफ्त में दान में दे दिया, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ता और जनता में बहुत रोष है, क्योंकि कार्यकर्ता 5 साल काम करता है, हम लोग भी कार्यकर्ता है और जनता हमारी सपोर्टर है. उनको लगा कि जिस नीतीश कुमार की लेवल, पॉपुलरिटी लेवल बिल्कुल डाउन है, डाउन टू मतलब डाउन मतलब आप कहिए कि 100 से 1 हो गया है, 0 तो हम नहीं कहेंगे, उसके साथ सारे सर्वे बता रहे थे कि इनके साथ जाने में घाटा है. लेकिन हमारे प्रदेश के कुछ नेताओं ने अपने चक्कर में, जो नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार बने, वो बीजेपी कम जदयू के ज्यादा है, जिसके कारण रोष था.
okay.
और इसी कारण
प्राइम मिनिस्टर टूडे रामेश्वर जी, अभी आता हूँ आपके पास. सत्य प्रकाश जी, लेट मी कम टू यू एंड देन ललिता जी कैन ऑल्सो कम इन. Mr. Satya Prakash, see, the Prime Minister in his speech today said, he says that you look at all the surveys, initial surveys right now, and they show that an NDA government is coming back to power. He seems extremely confident. Now, you would argue that obviously you enter elections being confident. You don't go into an election saying that you're going to lose. But if it is so obvious, things on the ground, then do you think that there is there is a great sense of confusion within the NDA, that you're not being able to handle this situation and perhaps just putting up a front that no, all's well, Nitish Kumar is our leader?
It was, you know, repeatedly said and repeated by every top leader of BJP and the NDA that the Nitish Kumar is the NDA leader in Bihar. So there is no confusion at all
but
regarding
no
the leadership.
But why no clarity on Chirag Paswan?
Look, Chirag Paswan is giving so much message to NDA in the, at the central level, and you recently his father demise. So we should not comment much on Chirag Paswan. He has no ground in Bihar, that I must tell you here. Now, Rameswar Chaurasia, a very long-time leader of BJP, shifted to Chirag Paswan and is still praising Modi ji. What kind? He is in a doldrum.
No, Chirag Paswan is also praising Modi.
No, fine.
That's where the confusion happens.
There is no confusion. If Chirag Paswan praising Modi and his work, so definitely Modi ji is clarifying that Nitish Kumar is the leader of NDA in Bihar and he is going again to win the Bihar.
I will tell you my original hypothesis. Let me come back to my Lalita Kumaramangalam. My original hypothesis is that you look at Chirag Paswan, he says, "You cut my chest into half and you will see Modi," right?
Yes.
Then you look at statements being made by Rahul Gandhi against
yes.
Mr. Modi. Look at statement by Tejaswi Yadav, a little bit on Nitish Kumar, but largely about Modi.
Yes.
Is this less a Bihar election, less about Mr. Nitish Kumar and more about Modi? I.e., my hypothesis that this is a Modi versus Tejaswi election and not a Nitish versus Tejaswi election.
Sanket, let's not forget the fact that Mr. Modi has an overall and very overarching presence throughout the country. To unnecessarily compare him with Nitish ji, when over and over again, as Satya Prakash ji has said, every tall leader, every main leader, every one of the big leaders, and all of us too, have repeatedly said that in Bihar, Nitish ji will be the chief minister again. It's quite clear that NDA will win. And it's, I think it's very immature to say that Chirag Paswan,
five
who is
key
just
points.
A youngster, wait, Chirag yeah. has still got to make his mark. His father was really the tall leader of Bihar. He's recently lost his father. He is struggling to find his way. And I don't think that it's fair to say that we are shoving him aside or that he's not sure that he will support BJP. He's made it very clear that whatever may be his relationship with or without Nitish, and remember, they're both from the same state. So Chirag is really fighting more Nitish than Modi than he ever would Modi ji, because Modi ji is the prime minister and he's not from Bihar. Nitish Kumar is. You know what local politics are. Every
yeah,
one of
I
us
know.
On this
and
show
then in that case, see,
so
if
there
I were
is
to
no
put
doubt
two together, Ms. Kumaramangalam, this is a very comfortable situation. Say, for
he
instance,
will support
if,
the NDA. He's made it very clear.
If
I don't
JDU
think there's any
does
doubt
not
in
do
anybody's
well,
mind.
If JDU does not do well, and if the BJP has a fighting chance with a little bit of support from the LJP, it's a win-win proposition.
I don't think that it's very premature for us to make these calculations
now.
I agree.
The election
is just a few days away. We have to wait for about 2 weeks. In 2 weeks, we'll know what's going to happen. And as everybody knows, even 2 days is a huge time in politics.
No, so Ms. Kumaramangalam, are you ruling out this calculation? As of this moment, are you ruling out any post-poll calculation with LJP?
Sanket, I'm not a journalist. I don't know. I don't do these speculations and calculations. That's not my job. I know for a fact, and everybody who's, I mean, in the public who knows anything about politics and is following the Bihar elections, knows that the young boy whose father just passed away has made it very clear, Chirag Paswan, that he is a supporter of Modi ji. The rest of it, let's see how it plays out. We don't know if he's going to get seats, how many he will get, nothing.
Shivanand Tiwari ji, main aapke paas wapas aana chahta
hoon. It's very premature to speculate, I think.
Okay, RJD se Shivanand Tiwari ji, main aapke paas wapas aana chahta hoon. Dekhiye, paanch jo badi aalochnaen hain Nitish Kumar ki. Aisa nahi hai ki wo neta chun liye gaye hain NDA ke to sab kuch theek hai. उनकी पांच बड़ी आलोचनाएं हैं और ये बहुत सारे लोग दबे स्वर में इसे ही भाजपा में भी ये आलोचना करते हैं. सबसे पहली बात शराबबंदी. आरोप ये है कि शराबबंदी में बहुत सारी जगह इलीगल लिकर ट्रेड हो रहा है. इलीगल लिकर ट्रेड हो रहा है और पुलिस की साठगांठ के साथ होता है. उसके बाद आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया है. देयर इज करप्शन. नो वर्क इज बीइंग डन विदाउट गिविंग मनी. कोरोना में जो मजदूरों की जो पलायन हुआ था उसको लेकर के बहुत आलोचना हुई नीतीश कुमार की. एजुकेशन सिस्टम पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और नई इंडस्ट्रीज पर जो सरकार ने ये कह दिया कि भाई क्योंकि हम लैंड लॉक्ड हैं, समुद्र नहीं है हमारे आसपास, तो उसकी वजह से ये सब हुआ है. आपको लगता है कि ये है असली चिंता की विषय जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा चिराग पासवान को भी फ्लोट करके रखे हुए? अब ललिता जी नहीं मानेंगी इस बात को, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ.
संकेत, आवाज बंद
जी जी शिवानंद जी बोलिए.
संकेत, सबसे पहले अब चिराग पासवान की बात पर आपको आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे. चिराग ने ये कहा कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे और इसके बावजूद ना नरेंद्र मोदी ने ना अमित शाह ने किसी ने भी चिराग पासवान को कहीं से फटकार लगाई इस बात पर.
बिल्कुल,
ये बिल्कुल उन्होंने कहा. क्यों कहा? इसलिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि रामविलास पासवान को अपमानित करने का काम किया, पूरे पासवान कम्युनिटी को अपमानित करने का काम नीतीश जी ने किया. जब उन्होंने महादलित बनाया तो महादलित में सिर्फ एक दलित जाति पासवान को बाहर कर दिया, उनको कुजात छांट दिया. और उसी समय से मैंने रामविलास भाई को यह लगा कि ये आदमी हमारा अपमान कर रहा है. मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार कहा करते थे रामविलास पासवान के बारे में कि वो एक लीडर हैं, लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है. बाकी जो बिहार के विकास की बात है, आप देखिएगा, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, हर सेक्टर में जो नेशनल एवरेज माने प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है उसके मुकाबले आप बिहार का की हालत देख लीजिए. बिहार की पूरी इकोनॉमिक जो है वो सेंट्रल रेवेन्यू का जो हिस्सा मिलता है और ग्रांट मिलता है उस पर निर्भर है. पिछले बार 2018-19 में आप देखिए कि पेंशन और तनख्वाह के मद में जितनी राशि खर्च हुई उससे कम राशि जो है मैंने हासिल किया मैंने बिहार की सरकार ने. तो इतनी बुरी हालत. और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आ रहे थे, नीतीश कुमार ने कहा कि हम इनको घुसने नहीं देंगे. आप भला बताइए कि ये प्रवासी मजदूर जहाँ काम कर रहे थे वहां इनका काम बंद हो गया था, इनको मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया था, इनके सामने सवाल था कि कोरोना से मरें या भूख से मरें, और हजार हजार
तिवारी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो रोष है और इन सारी चीजों को लेकर के जो प्रवासी मजदूर हैं उनका गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ है या मोदी के खिलाफ है?
ये देखिए, अभी ये जलवा जो है मोदी जी का खत्म हो चुका है. आप देखिए कि उनकी सभा में क्या हालत थी. आप जो मैंने लाइव उनका जो प्रोग्राम हो रहा था उसको सुनने वाले कितने थे. और राहुल गांधी और
तिवारी जी वो तो कह सकते हैं ना, उन्होंने कोविड का पालन किया, एक कोरोना की वजह से उन्होंने चेयर दूर रखी. अब आपकी रैलियों में तो सब एकदम औंधे पड़े थे. द नंबर ऑफ पीपल, आरजेडी की रैली में कोई पालन तो हो नहीं रहा था कोरोना का.
देखिए, जो पंडाल दिखाई दे रहा था, पंडाल प्रधानमंत्री जी के भाषण का जो पंडाल दिखाई दे रहा था, संकेत, प्रधानमंत्री जी के भाषण का जो पंडाल दिखाई दे रहा था वहां कहीं सोशल डिस्टेंसिंग था? सबके चेहरे पर मास्क था? ये बेकार की बात है कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि लजाई लइका ढोणी छुए. आज वही हालत है कि सभा में कोई आ नहीं रहा है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं. हम आपको बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का वो जलवा नहीं रहा.
ये तो बड़ा नहीं, इसमें तिवारी जी देखिए, ऐसा एक तो वो पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का,
खोल के भी सपने देख
रहे हैं. उसमें आपने उसको स्पिन दे दिया कि
उनका
लोग नहीं है इस वजह से कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग.
प्रधानमंत्री संकेत, प्रधानमंत्री से ज्यादा लोगों की रुचि उनके हेलीकॉप्टर में है और वहां जो हेलीकॉप्टर देखने वाले लोग थे वो कह रहे हैं कि नीतीश नहीं चाहिए, हम मोदी को लोकसभा में दिल्ली के लिए वोट देंगे लेकिन यहाँ नीतीश को हम वोट नहीं देंगे, ये साफ कह रहे थे लोग। आप ही के चैनल में हमने देखा है।
तिवारी जी एक सेकंड, राइट टू रिप्लाई टू ललिता जी, बट बिफोर आई कम टू यू ललिता कुमारमलम, बिफोर आई कम टू यू
रामेश्वर चौरसिया हैज टू लीव अस। मैं जाऊंगा
जी, मैं रामेश्वर जी का एक आखिरी बयान के लिए मैं उनके पास आना चाहता हूँ। जी चौरसिया जी बताइए।
देखिए संकेत जी, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आप मुझे बताइए एक कैसे मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ चुनाव आयोग को लिखते हैं कि आप पब्लिक मीटिंग के लिए अलाउ करो और दूसरी तरफ कहते हैं कि पंडाल नहीं लगेगा, पूजा नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़े जाएंगे। यही है ना मुख्यमंत्री, आपको मालूम है ना बिहार में लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, मतलब पंडाल में 50 लोग नहीं होंगे, इनकी सभा में 2000 5000 10000 लोग होंगे, ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है। इसलिए इस मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब शासन करने लायक बचे नहीं है सर। एक बात बताइए, मैं भी इनके साथ था, मैंने बोला आप पंचायत में दारू की दुकानें क्यों खोल रहे हो, दारू तो बिकती थी शहरों में, ये इलेक्ट्रिक आप बात कर खोलोगे तो वहां महिलाएं परेशान होंगी, अब 30 किलोमीटर मजदूर दारू लेने रात को नहीं जाता, लेकिन गांव गांव में इन्होंने दारू खोलवाया, पीने की आदत डलवाई, फिर दारू बंद किया, और दारू बेचने वाले कौन है, सब इनके लोग हैं। बीजेपी जदयू का जिला अध्यक्ष सबसे पहली बार दारू में पकड़ा जाता है और सेक्रेटरी को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, जो के पाठक सबसे ईमानदार सेक्रेटरी था यहाँ, तो इनके इन्होंने बिहार को तो कबाड़ा कर दिया है। 20,000 करोड़ रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, न टीचर को पेमेंट हो रहा है, न कोई चीज हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। क्यों नहीं ये जांच कराते हैं सृजन घोटाले में, आपको मालूम है घोटाला, आपको एक लाइन में बता दूं, ऐसा घोटाला है कि सरकारी पैसे को निकाल करके खजाने से किसी व्यक्ति को दे दिया गया, सूद पर चला रहा था। इस तरह का घोटाला दुनिया में कहीं सुने हैं आप कि सरकारी खजाने से पैसे निकल गए और उसको दूसरा व्यक्ति सूद पर चला रहा हो?
ये पहला घोटाला है जिसमें पैसे रिकवर हुए।
सुन तो लीजिए आप तो बेकार की बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, बिहार के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, आप पर्सनल अटैक करते हैं, आप पहले चुप रहिए, आप समझिए बिहार को।
नहीं नहीं, उनको राइट टू रिप्लाई है चौरसिया जी,
28वें पोजीशन पर बिहार
है। प्रकाश जी इज अ स्पोक्सपर्सन फॉर द जेडीयू, ही हैज अ राइट टू डिफेंड। आपने एलिगेशन लगाया, उसका जवाब तो सुन लीजिए। हां
मैंने आपको नहीं टोका था, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। टोका
तो यू आर मेकिंग अ फेक एलिगेशन अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट।
मैं नहीं फेक कर रहा हूं, उसकी जांच चल रही है, आपका नहीं रिकवर हो गया, आज भी बिहार 28वें पोजीशन पर क्यों है आपके नीति आयोग के रिपोर्ट से? बहुत विकास किए हैं नीतीश कुमार, नीतीश रटना है तो आगे आपकी भी
7.5% ग्रोथ रेट है, ये आपको पता है रामेश्वर जी?
हमको सब पता है ग्रोथ रेट का क्या होता है, मुझे भी पता है बिहार में अपा के सासाराम की गलियों का हाल देख लीजिए,
हर गांव में सड़क है, हर गांव में बिजली है, लड़कियां साइकिल पर चलती हैं, महिलाएं पंचायत का
बच्चा। ओके ओके, टाइम आउट, आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द मेन इशू, बट थैंक यू वेरी मच रामेश्वर चौरसिया जी।
मैं एक मिनट आपको खत्म करता हूँ, बीच में कोई नहीं बोले। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सासाराम में आपकी टीम आई थी, मैंने दिखाया, सासाराम में रोज सड़क बनती है, रोज गड्ढे में तब्दील होती है। शेर शाह सूरी सासाराम के थे, मेरा दर्द ये है कि 5 साल में उसने हिंदुस्तान को बदल दिया, 15 साल में सासाराम को इन्होंने कबाड़े में डाल दिया, पीने का पानी नहीं आता है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं, सासाराम जैसे शहर में पीने का पानी घरों में नहीं आता है, और यही इनका विकास है। आप ग्राउंड पर आके देखिए, पेपर पर लिखना इतना परसेंट ग्रोथ, इतना परसेंट ग्रोथ हम लोग यहाँ भुगत रहे हैं, और ये टीवी पर बैठ कर
मतलब पेपर वाली ग्रोथ मत दिखाइए, असली में ग्रोथ दिखाइए। बहुत सारी बातें आपने बोली है रामेश्वर जी,
जनता क्यों इनका विरोध कर रही है, मैं मुझे ये बताइए जनता क्यों इनका विरोध कर रही
है? राइट टू रिप्लाई, राइट टू रिप्लाई टू ललिता कुमारमंगलम।
वर्मा भी तो पेपर वाले डेटा पे करते हो।
ओके ओके, वन बाय वन, ललिता कुमारमंगलम, योर राइट टू रिप्लाई, यू वांटेड टू कम, वी विल बिगिन विद यू फर्स्ट।
सी, या द फर्स्ट थिंग इज दैट फॉर ऑल द रेटरिक एंड ऑल द एंगर दैट मिस्टर चौरसिया इज एग्जिबिटिंग अगेंस्ट मिस्टर नीतीश कुमार, द फैक्ट इज दैट बिहार टुडे इज मच बेटर नाउ देन इट वाज इन लालू यादव टाइम। Forget about the huge corruption and all of that. If you want us to leave that, even if you want us to leave
Kumara,
that,
Ms. see the reference point cannot always be 2005. It cannot always be 2005. There will be questions asked,
but the truth also
over the next 15 years
compared,
also.
even compared to 5 years back. If you leave aside the 8 months of COVID, where the whole country has taken a huge hit, you then want to compare, you compare the last December to this October, November, and you will see that aside from the fact that there were many migrants who went back to Bihar because they lost their jobs due to COVID and the lockdown was enforced and everything was had to be shut down. Anyway, that's a different argument. Rhetoric and jokes apart, Bihar is much better now with regard to electricity, with regard to a lot of other infrastructure.
With a reference point
like
of
roads,
2005, Ms. Kumaramangalam.
No,
with a
not
reference
just
point 2005.
Even possibly a reference point to 2010, to be quite blunt. If you look at the data that is available, unfortunately, I don't have the time to present all of that here. But we have had at least, I think all India, the figure is 3.5 crore jobs that were given to you with MNREGA and 6.3 lakh households. And for Bihar, I think it was a little less than a lakh number of households, a huge number of households, who've been working for 100 days and for MNREGA in the last, is it about 180 days, odd 180 odd days since the lockdown. And these are the data that, I mean, you know, it's easy to say that Bihar has had no jobs. Nitish has provided no jobs. COVID is a time when it's very unfair to start comparing March 2020 to whatever, even if you want to compare it to pre-Lalu days or 5 years before this election, which is 2015. Okay. It's not fair to compare those data. Look at the data of December 2019, and you will see that not only had the number of kilometers of roads that were built in Bihar, and
see,
that to link roads, not just national roads.
The point is, Anand Mehtab, Chairperson, Research and Manifesto Committee of Bihar Congress, is also now with us. See, the point is, data and development must not just be done, but must be seen to be done. That is how politics in this country works.
Obviously, the RJD and the gentleman who just spoke, Rameshwar ji, is going to say that nothing is being seen. That is their job. They are fighting for elections.
Okay. Anand Madhav is also with us.
So it's not as if they are going to be, you know, be absolutely snow white and driven. I mean, how do you say, doodh ka dhula in these things.
Sure.
Of course, they are going to say that Nitish has done no work. But if you look at the statistics,
just about
you
Nitish.
See that this
is
not entirely true.
That comes beyond the spectrum of just politicians also. But I want to introduce Mr. Anand. Mr. Anand from the Congress Party, you have drafted the manifesto. I want to know from you, Mr. Anand, what is your assessment, your party's assessment? Is this a contest between Tejaswi and Modi and not Tejaswi and Nitish, which is the basis of this debate? And Lalita ji does not
Tejaswi and Modi?
Yeah, I am not saying anything about that. Yeah. Like I said, I'm not here to speculate.
Sure.
We'll see when the results are out.
Yeah.
We'll know what it is.
Anand.
In fact, there are two things which I would like to tell you. That first of all, there is a vision, and other side is a bundle of lies and bundle of jumlas. This is the basic difference between the two leaders, Rahul ji and Modi ji. But if you talk about the Tejaswi and Modi ji, of course, Bihar is the youngest state and looking for the young face. Tejaswi is a promising leader, and we are sure that the two big leaders of Bihar and nation, Modi ji and Nitish ji, they are not tired and retired. They should take rest because they have nothing to say. They are just sharing today what has happened in Bihar. He has just shared the hatred. He has just shared the heart breaking brotherhoods, and with the language of partisan and the forging. Every time when he comes, he is not fulfilling his promises. And he is repeating the same thing again and again. He is just talking and giving trying to woo the Biharis and the Indian mass with their false promises.
Okay.
But now ground reality is entirely different.
Sure.
People, they all know what is what.
No, but the groundswell is there for, the groundswell can be seen visibly for Tejaswi Yadav, not Congress. Not Congress. I may add this
as well.
Of
course, in Bihar, Tejaswi is our leader. And he is our chief minister face. So of course, there
Sabha,
will be
Sabha Naqvi
the base.
Sure. Sabha Naqvi's are now also with us. Sabha, let me ask you this question, which Lalita Kumaramangalam does not like. She rules this out as speculation by journalists. But, you know, reams and reams are now being written by experts, by journalists, and even reporters who are there on the ground, who feel that Nitish Kumar's popularity seems to be going down, and this has become a contest between Tejaswi and Modi. And not Tejaswi and Nitish. I'll come to you, Anandji. Sabha Nakvi. Yeah.
So, here's what I think, Sanket. I think, yes, there are two, three elements in this election which have become very clear. Number one, Tejaswi had been written off and he's performing better than everyone expected. Is it going to be enough? I somehow doubt it, but you never know with elections.
Yeah.
I mean, the BJP did lose Jharkhand, right? Which was carved out of Bihar last year. However, what has also become clear is that the entire campaign to separate Prime Minister Narendra Modi from events in the earthly realm has more or less succeeded. He is disconnected. His image is disconnected, appears to be, to my view, from governance issues. And all of it is targeted at Nitish Kumar. It has happened through social media, wide use. It's a process which we
and
have
seen. And
it works
for the BJP.
It works for the BJP. Hmm. So now we have to see. I personally think that if Nitish performs very badly, then, there is even the possibility of the JDU who wins being absorbed into the BJP. It can happen. And Nitish being dumped. And if you know this, Sanket, that in Bihar BJP unit, there has always been one faction, not Sushil Modi, not the deputy chief minister, which has always said, go it alone. The sort of hardline faction has always said that. And then a chief ministerial face would be found from there. I mean, the most likely scenario, all the opinion polls say, is that Nitish and NDA would make it together. But I'm asking you this question. If the BJP is way bigger than JDU, then will there not be a lot of pressure on the chief ministerial question, but here's what I think will happen, Sanket. We will get to know after the 28th whether in the seats where LJP is fighting against JDU, where the votes are being transferred.
Yeah.
That will become known to the political class.
Will we also
only
know whether LJP is hype and not
LJP
much
will
of
also
reality?
Know that. Yeah, huh? And the BJP has the money, the BJP has the cadres. So, we will know who they are transferring their votes to.
Okay.
It will only be known after the 28th.
Sure.
I think.
Yeah, very quickly, last comment, Ms. Kumaramangalam, as I wrap this up.
As Sabha made it very clear, politics is often a game of chance. The NDA has made it very clear that if we win, Nitishji will be the chief minister. Now, what is going to happen may be quite different from what we are speculating.
No,
may
even
happen.
If you have more MLAs than JDU.
There's many a cup between a slip and the lip. Yes, that's what the Prime Minister has said. And I don't see any reason for us to not believe him. Now, let us wait and see. And that's the best. I mean, that's all that I can say, because I don't think that there's going to be any doubt. The NDA will win. And Nitish will probably become the chief minister.
Okay.
With regard to Chirag Paswan, etc., like I said, he is fighting for his own survival. His father is gone. He has to make a place for himself. So he's doing what he needs to survive in politics.
Running.
I don't think that we should speculate so much so early. Of course, everybody has a right to their own opinion. It's not that, everybody is going to wrong and I'm the only one who's right.
Yeah.
It's quite possible that was what Sabha says. Also, there may be an element of truth.
Okay, Shivanand Tiwari, Satya Prakash, Lalita Kumaramangalam, Rameshwar
Chaurasia,
Anand Mehtab, as well as Sabha Nakvi. Thank you so much. We are stopping for a short break at this moment. When we come back, we would like to tell our viewers that there is this gentleman who is the Deputy Chief Minister of Bihar, who is presently fighting coronavirus inside AIIMS Patna, and such is electioneering for politicians that they find it very difficult and unsettling. Even coronavirus can't keep him away from the electioneering process. He joins us live from inside the All India Institute of Medical Sciences in Patna from his room and gives us this exclusive interview. We'll play out that interview after a short break. Medical Sciences Patna is the Deputy Chief Minister of Bihar, Mr. Sushil Modi. Modi ji, sabse pehle main aapke swasth ke bare mein aapse puchna chahta hun. Kya aap ab swasth hain? Aapko corona ho gaya tha?
Yeah, all the parameters are normal. CT scan is normal. There is no breathing problem, no fever, but still, because it takes time. So I've taken admission into AIIMS. So everything is going on very well. And I personally feel that within 4 or 5 days, and will be able to join the campaign.
Sure. But Mr. Modi, I'm sure you must have heard comments coming in from many people in the opposition who say that if the deputy chief minister can contract this virus, just imagine what is happening as far as election rallies are concerned. And this is also a telling commentary of the manner in which the state government has handled COVID-19. How do you respond to that?
See, Bihar is one of the best performing state in controlling the COVID. In Maharashtra, there are more than 40,000 people who died because of COVID. And Bihar, we have been able to control the COVID pandemic. And till now, about 100 people have died. Unfortunately, 100 people have died. But we have been able to save lives of thousands of people in Bihar. And the death rate is also very less. And as on today, the recovery is 94%. And we are having testing facility even at the block headquarters. More than 1,25,000 testing is taking place per day. So what else you want in a bigger state like of a 12 crore population?
जी ये बताइए, अब आप भी जानते हैं, देखिए RT-PCR एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें वो नेजल स्वाब लेते हैं, माउथ का स्वाब लेते हैं, वो वाला टेस्ट तो बहुत कम हो रहा है. रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है
भाई. आपको आप कंपेयर कर लीजिए बाकी राज्यों से, जो RT-PCR टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है उसका जो रेशियो है, दैट इज द सेम रेशियो विच इज ऑफ ऑल इंडिया. इसमें ये कौन बड़े, जितनी हमारे RT-PCR कम से एंटीजन टेस्ट तो हो रहा है ना, RT-PCR हमारी जितनी क्षमता है उतना कर रहे हैं. एंड द रेशियो इज द सेम ऑल इंडिया रेशियो जो है RT-PCR का, वही जो. और आप ही बताइए ना कि बिहार में केवल 1100 लोग डेथ किए, क्या किसी ने आंकड़ा छिपा लिया? And why 40,000 people died in Maharashtra? Why 10,000 people died in Tamil Nadu? Why the Kerala? Say, it is not, I am blaming anybody. I know कि ये कैसी बीमारी है कि कोई दावा नहीं कर सकता है कि आज कंट्रोल में कल आगे नहीं बढ़ सकता है.
बिल्कुल.
लेकिन मैं इतना दावा कर रहा हूँ, हमारे हॉस्पिटल में एम्स में हूँ, 80% बेड खाली पड़े हैं एम्स के अंदर, PMCH में, NMCH में. So now there is no panic. There is sufficient arrangement of oxygen beds, ventilators, doctors are now trained. People also know how to treat, how to go for a home quarantine. But still, nobody can claim that it can't spike. But as on today, we've been able to control this pandemic to a great extent.
जी, अब मोदी जी मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इलेक्शन कैंपेनिंग. इट हैज रीच फीवर पिच टुडे. प्रधानमंत्री आए, नीतीश कुमार भी वहां पर बोल रहे थे. एक चीज जो अजीब लगी और खटकी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए. नीतीश कुमार ने अपने भाषण में केंद्र की स्कीमों के बारे में ज्यादा जानकारी दी बजाय इसके कि बिहार में उन्होंने 15 साल में क्या किया है उसके बारे में, और फिर प्रधानमंत्री बोले. तो क्या जिस तरीके से अब विश्लेषण हो रहा है कि नीतीश कुमार को पहली बार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सहारा लेना पड़ रहा है, इट्स नॉट द सेम इक्वेशन एनी मोर एज इट वॉज इन 2005 एंड 2010 व्हेन नीतीश कुमार वॉज मोर इम्पोर्टेंट इन द मिक्स एंड द बीजेपी वॉजंट, इट्स द अदर वे अराउंड दिस टाइम.
देखिए ऐसा है बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो डन मच मोर फॉर बिहार. तो केंद्र ने जो किया है कोरोना काल के अंदर, उसका जिक्र करना कोई गुनाह है क्या? अगर 40 kg ration has been provided to each and every individual of Bihar, Bihar is having a population of 12 crore. And of 12 crore, 9 crore people are getting 5 kg of ration per person. So 40 kg ration per person. तो अगर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कोई गुनाह है क्या, कोई गलत है क्या? अगर बिजली पहुंची है, आखिर 10 मिनट में कितनी बातें बोल सकता कोई आदमी? लेकिन जब नीतीश जी भाषण करते हैं या हम लोग जब जाते हैं तो सेंटर की उपलब्धियां और राज्य की उपलब्धियां
नहीं, पर चुनाव तो राज्य का है ना.
नरेंद्र मोदी भी, अब नरेंद्र मोदी एज वेल नीतीश कुमार,
बट द इलेक्शन इज अ स्टेट इलेक्शन,
सो नेचुरली टॉक अबाउट द अचीवमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट.
नो नो, आई एग्री, वी आर इन एन अलायंस, बट मिस्टर मोदी आप इस चीज का इल्म अगर हो कि ये राज्यों के चुनाव है, केंद्र का चुनाव नहीं है. लोकसभा में अगर ऐसी बातें बोली जाती तो समझ में आता. आप अपनी उपलब्धि नहीं गिना पा रहे, बिकॉज द पॉलिटिकल एलिगेशन इज कि लोग बहुत नाराज हैं. लेख लिखे जा रहे हैं कि किन मुद्दों पर नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं कि अब उनको लोकप्रियता के लिए मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है.
अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, बिजली पर किसी विपक्ष ने मुद्दा उठाया क्या? सड़क पर किसी ने मुद्दा उठाया क्या? दिस बीएसपी बिजली सड़क पानी इज यूजुअल इट वाज एन इलेक्शन इशू इन ईच एंड एवरी इलेक्शन ऑफ इंडिया.
भ्रष्टाचार पर मुद्दा उठाया, कोरोना पर मुद्दा उठाया, शिक्षा व्यवस्था पर
उठाया. बिजली सड़क पानी इज नॉट एन इशू इन बिहार. व्हाई दे आर नॉट रेजिंग? माइग्रेंट लेबर इज नॉट एन इशू इन बिहार. कोरोना इज नॉट एन इशू. विपक्ष फ्लड के मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रहा? बिकॉज यू टैकल इट वेरी बेहतर तरीके से. हम लोगों ने कोरोना का, माइग्रेंट लेबर का, बिजली का, सड़क का, पानी का, हम लोगों ने उसको टैकल किया. और फिर यह केंद्र का, ये चुनाव राज्य का है, लेकिन केंद्र ने जो बिहार के लिए किया, नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे हैव डन इन अदर स्टेट्स, बट व्हाट दे हैव डन फॉर बिहार. सो नेचुरली जब केंद्र में हमारी सरकार एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार ने बिहार में जो किया, 1,25,000 करोड़ का पैकेज जो बिहार को मिला, आज जो पुल, पुलिया, सड़क, ब्रिजेस बन रहे हैं, किसी ने सोचा था क्या?
नहीं, पर जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुल बह भी तो रहे हैं मोदी,
दोनों मिलकर बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं.
नहीं, मैं सुशील मोदी जी, ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे मुद्दे नहीं उठाए विपक्ष ने, लेकिन जनता जिसका प्रतिनिधित्व ऐसा विपक्ष बताती है कि वो ज्यादा कर रही है आपके मुकाबले, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, कोरोना संकट का मुद्दा उठा रहे हैं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और नए उद्योग और धंधे नहीं लगाए, इसके बारे में बातचीत हो रही है.
कोरोना का मुद्दा किसने उठाया बताइए? कोरोना के बारे में एक लाइन बोला किसी ने?
नहीं तो तेजस्वी यादव बोलते हैं.
आप मुझे बताइए ना, कोरोना में इससे बेस्ट
उनका तो कहना है कि चुनाव ही नहीं होना चाहिए था कोरोना काल में.
नहीं है तो ये तो चुनाव आयोग से बात करें, हमसे क्यों बात कर रहे हैं? It is for the election commission to decide then why they are participating. They should have boycotted it. जी. उनको बायकॉट कर देना चाहिए था.
एक 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 मैं आपसे साक्षात राजनीति जी,
आप जो बात बोल रहे हैं कि ये माइग्रेंट लेबर का मुद्दा, माइग्रेंट लेबर को 22 लाख लोगों को फ्री में ट्रेन में बैठा कर घरों तक पहुंचाया गया, लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में 15 लाख लोगों को रखा गया. आपको मालूम है क्वारंटाइन सेंटर में चटाई और
शुरुआती दौर में तो बस नहीं चलाई ना बिहार ने.
जी
शुरुआती दौर में बिहार ने बस नहीं चलाई जिस तरीके से यूपी चला रहा था.
आप कहां के रहने वाले हैं? क्या कोटा से बस से लोगों को लाया जा सकता था क्या? इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम कोटा, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम सूरत टू बाय बसेस? एंड हाउ मेनी डेज इट विल टेक? एंड हाउ मेनी पीपल विल कम? इज इट पॉसिबल?
मिस्टर मोदी,
अपने सवाल कैसे जवाब दीजिए? आप मुझे आप कह रहे कि बसों से नहीं लाए. इट वॉज नॉट फ्रॉम बनारस से, इट वॉज फ्रॉम सूरत, इट वॉज फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम चंडीगढ़, from Delhi.
No, my only point is that this is the reservation that has been raised by people and the opposition. I'm only asking you questions.
Nobody is raising. Only some media people are raising. Nobody is raising this issue.
Okay.
Very happy people, the migrant labor, they are happy what the Narendra Modi and what Nitish Kumar has done for them. They are more than happy.
दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप भी आराम करें. एक तो ये है कि आज प्रधानमंत्री ने सासाराम में जो रैली थी उसमें उन्होंने दो चीजें ऐसी बोली शायद जो कि खटकेगी नीतीश कुमार को. एक तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी रामविलास पासवान को, वो ठीक किया, उन्होंने रघुवंश बाबू को भी श्रद्धांजलि दी, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं बोला. आपने बोला, आपकी पार्टी बोल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है. तो एक तो ये
उन्होंने कितना, इसका मतलब कि आपने ध्यान से सुना ही नहीं.
हाँ,
उन्होंने शुरू में कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं.
पर ये तो तेजस्वी के लिए भी बोल सकते हैं.
नहीं, आप नहीं समझ पाए होंगे, संकेतों में सारी बात कह दिया. और नीतीश जी इतने खुश है, आपको किसने कह दिया कि नीतीश जी ना खुश है? आज तो उन्होंने
आपका ये कहना है कि कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये चिराग पासवान के लिए बोला था.
बीएसपी का नाम नहीं क्या, बसपा का नाम, जो नॉन एंटिटी है इलेक्शन के अंदर, जिनका आपको एक सीट भी जो लोग नहीं जीत सकते हैं. व्हाई द पीएम विल मेंशन दोज पार्टीज और दोज पीपल विल नॉट बी एबल टू बी गिवन अ सिंगल सीट इन बिहार.
सो दिस जाइव वाज फॉर चिराग पासवान.
जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है, आरजेडी है, कांग्रेस, हम उस पर अटैक कर रहे हैं. अब बीसों पार्टी लड़ रही है चुनाव, सब पर बोलना आवश्यक है क्या? और हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है.
मेरा आखिरी सवाल सुशील मोदी जी,
व्हाट सुशील मोदी इज सेइंग एंड व्हाट प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह इज सेइंग, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग रहा है क्या?
ओके okay. Okay, Mr. Sushil Modi, thank you so much and hope you get better and hit the ground running. Thank you so much for speaking to NDTV.